ओम शांति। अभी के सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी इंदिरा दीदी जी। सब एक हाथ हिलाकर दीदी जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। आप महाराष्ट्र गोंदिया से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री ली है और साथ साथ अपनी संस्था द्वारा जो वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आपने अन्नमला यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री ली है। 1987 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1998 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आरंभ के 5 वर्ष आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाले स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर में अपनी अमूल्य सेवाएं दी है। 2001 में आपने ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित मनोबल एवं मनसा सेवा नामक पुस्तक लिखने के आप निमित्त बने, जिसका विमोचन अव्यक्त बाप दादा से करवाया गया था। उसके बाद कुछ वर्षों तक नागपुर एवं मुंबई गामदेवी सेवा केंद्रों पर रहकर आपने ईश्वरीय सेवाओं का अनुभव किया। 2009 से लगभग 14 वर्षों से आप स्थायी रूप से पांडव भवन ग्लोबल ऑफिस में सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ देश विदेश से आने वाले विजिटर्स, डबल फॉरेनर्स, बी के भाई बहन हैं कि सेवाओं में आप सदा उपस्थित रहते हैं। साथ साथ उनके लिए आयोजित होने वाले प्रोग्राम्स का आप कुशल कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। आप एक कुशल राजयोगा शिक्षिका है। शांतिवन हेडक्वार्टर के परिसर में चलने वाले शिविरों में आप सेशंस लेते हो, भट्टियों में भी क्लास करवाते हैं। आप ज्ञान को बहुत सरल कर उनकी गहराई तक ले जाते हो ताकि ब्राह्मण परिवार उसे सहज समझकर अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो आज का विषय है पूज्य स्वरूप हनुमान। तो चलते हैं दीदी जी के पास, सुनते हैं आदरणीय इंदिरा दीदी से।
ओम शांति। तो आज का टॉपिक है परम पूज्य। हाँ, परम पूज्य तो कौन है? हाँ, शिव बाबा। और हम कौन है? हम पूज्य स्वरूप है। तो पूज्य स्वरूप हनुमान, परम पूज्य भगवान होते हैं और हम हैं पूज्य स्वरूप, है ना? तो आज के इस टॉपिक की प्रेरणा आज की मुरली रही। आज की मुरली में बाबा ने हनुमान को याद किया। किस संदर्भ में? तो बाबा ने कहा कि बेशक ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुकर्रर रथ है कि जिस रथ में प्रवेश करके बाबा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन भक्तों को भक्ति का भावना का भाड़ा देने के लिए मैं किसी में भी प्रवेश कर लेता हूं। अगर किसी की भावना हनुमान की है तो मैं उसको क्या करता हूं? हनुमान के रूप में साक्षात्कार कराता हूं और फिर उसको, उसके दिल उसमें लग जाती है, उसके पीछे लटक जाते हैं। इतना ही नहीं, अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा कहते आए हैं कि अंत में जो क्यू लगने वाली है वो किसके पास ज्यादा लगेगी? आप होवनहार देवी देवताओं के पास, शिव के पास भी क्यू लगेगी कम, लेकिन ज्यादा भक्तों की भीड़, भक्तों की क्यू कहाँ लगेगी? तो उसमें विशेष बाबा ने उल्लेख किया है अव्यक्त मुरलियों में कि देवों के रूप में विशेष ज्यादा भीड़ लगती है हनुमान जी के पास, और देवियों के रूप में विशेष भीड़ ज्यादा लगती है वैष्णो देवी के पास, है ना? देखते हैं ना वैष्णो देवी के पास कितनी भीड़ होती है। और फिर बाबा ये भी कहते हैं, क्योंकि भक्त भी तो तैयार करने, हमें सिर्फ प्रजा थोड़ी तैयार करनी, सिर्फ अपना राज्य पद नहीं, सिर्फ प्रजा नहीं, लेकिन भक्त भी तैयार करने, क्योंकि संख्या कितनी है भक्त देवी देवताओं की? 33 करोड़। और आज की डेट की पॉपुलेशन क्या है? कितनी करोड़ है, और उसमें भी अगर हम देखें कि भक्ति करने वालों की संख्या कितनी, 33 करोड़ से तो ज्यादा ही है ना, तो कितने भक्ति करेंगे। तो बाबा कहते भक्तों की को भी तैयार करना है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब आप, क्योंकि दुनिया की समाप्ति कब होगी, जब आप अपने आसुरी संस्कारों की समाप्ति करोगे। क्योंकि जब हम अपने आसुरी संस्कारों की समाप्ति करेंगे अर्थात ही हम बाप समान बनेंगे, तो तभी हम संपन्न संपूर्ण और फिर दुनिया बदलेगी। और उसी आसुरी संस्कार को खत्म करने का यादगार क्या है शास्त्रों में, लंका को जलाया गया। कैसे जलाया गया, पूंछ से। और अव्यक्त मुरलियों में अगर हम थोड़ा सा और गहराई से देखेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं सारे संगम के रेफरेंस है, तो बाबा कहते हैं कि जब तक मैं की पूंछ नहीं जलाई तब तक समाप्ति नहीं हो सकती। माना आसुरी संस्कार, मैं क्या है, मेरापन क्या है, आसुरी संस्कार है। हम सुनते आए हैं ना कि मानवीय वृत्ति क्या होती है, मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा, और दानवीय वृत्ति क्या होती है, हाँ मेरा तो मेरा लेकिन तेरा भी मेरा, और दैवी वृत्ति क्या होती है, तेरा तो तेरा और जरूरत पड़े तो मेरा भी तेरा। लेकिन ब्राह्मण वृत्ति क्या होती है, अभी हम ब्राह्मण हैं, क्या होनी चाहिए, क्या सिखाया बाबा ने हमें, न कुछ तेरा न कुछ मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। बताया ना बाबा ने, हम मेहमान हैं यहाँ पे, मेहमान का कुछ अपना होता है क्या, मेहमान का अपना कुछ भी नहीं होता है। तो वो जो न कुछ मेरा, मतलब न मेरा न तेरा, दुनिया एक रैन बसेरा, मतलब इसमें मैंपन नहीं है। तो लेकिन अगर जीवन में मैंपन है, मेरापन है, तो बाबा फिर उदाहरण देते हैं अव्यक्त मुरलियों में, किसमें रहता है मैंपन मेरापन ज्यादा, तो कहा बंदर में। एक बंदरी, उसका बच्चा अगर मर भी जाए 10-10 दिन तक वो फिर उसको गले लगाकर घूमती रहती, क्यों, क्योंकि अंदर में उसको एहसास क्या है, ये मेरा बच्चा है। तो एक तो मेरा बच्चा, और दुनिया में फिर प्रतिष्ठा के आधार से मेरा भी होता है, मैंने इतनी मदद की, हाँ तो मेरे को तो कुछ पूछा ही नहीं गया, होता ही नहीं होता है। तो दो तरीके का मेरापन है, मैंपन है। और बाबा कह रहे हैं जब तक इसको नहीं जलाओगे तब तक, क्योंकि लंका जब तक नहीं जली तब तक राम राज्य स्थापित नहीं, सीता का राम से मिलन संभव नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है कि सीता को राम से मिलाना है, कि कल भी प्रश्न आए थे, परसों मतलब दीदी निर्मला से जब पूछे जा रहे थे, हाँ किसी ने अमृत वेले के लिए पूछा था, तो हमने कल उसका टॉपिक रख दिया कि चलो क्लैरिटी आ जाएगी सबको। किसी ने कहा था कि मन तो लगाना चाहते हैं पर मन लगता नहीं है ना, हम चाहते हैं कि हम योग में स्थित हो जाएं पर हो नहीं पाते हैं। और जो नहीं चाहते हैं, दुनिया की बातें याद आए लेकिन वो आती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा ने उसका सलूशन दिया है कि मैंपन को जलाना है, मतलब क्या करना है, ज्वालामुखी तपस्या करनी है, लगन की आग बढ़ानी है, प्रभु से प्रीत की लगन बढ़ानी है, वो वाली आग। कहते हैं लगी लगन की अगन, ये जब बढ़ेगी तब जाकर क्या होगा, मैपन मिटेगा। और जब मैपन मिटेगा, मैपन मिटते ही हम उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी नहीं कनेक्ट होने का कारण क्या है कि बीच में देह अभिमान वाले मैपन बहुत आ रहे हैं। क्योंकि देह अभिमान वाले मैपन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी मैं सोल कॉन्शियस बनी नहीं हूं ना, सोल कॉन्शियस बनी नहीं हूं। अब परमात्मा तो हमेशा ही सोल कॉन्शियस है। बेसिक बात जो 7 डेज कोर्स में सिखाई जाती है कि 2 इलेक्ट्रिक वायर्स को कनेक्ट करना है, उसमें से करंट पास कराना है, तो उनके ऊपर का रबड़ हटाना पड़ेगा, दोनों का। ऐसे नहीं कि एक का हटाएंगे तो चल जाएगा, दोनों का। अब शिव बाबा का तो सदा सदा हटा हुआ है, क्योंकि वो अजन्मा है, देह धारण ही नहीं करता है, तो उसके ऊपर तो रबड़ है ही नहीं। तो मेरे ऊपर रबड़ है, लेकिन फिर अगर मैं अटेंशन नहीं देती हूं तो रबड़ है, लेकिन रबड़ उतारने का हमें तरीका दिखाया है बाबा ने, लेकिन फिर मैपन आया मतलब रबड़ उतरा नहीं है। और फिर रबड़ ही नहीं, ये रबड़ वाली, ये बिना रबड़ वाली, कितना भी जोड़ो कनेक्शन होने वाला नहीं है। तो वही हम कल कह रहे थे, प्रश्न कोई परसों पूछ रहा था कि चाहते तो है पर मन टिकता नहीं है। वो तो तभी होगा जब पूरी तरह से रबड़ को हटा दे। और बाबा ने उसमें मुरली में ही कहा, ये मुरली है 15/7/73, 15 जुलाई 1973, आप इसको फिर रेफर कर सकते हैं बाद में। उसमें बाबा ने कहा ज्वालामुखी तपस्या की आवश्यकता है, शक्तिशाली याद की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा ने उसमें कहा कि ज्वाला देवी की भी यादगार है, क्योंकि हम ज्वाला स्वरूप बने हैं, तो उसकी भी यादगार है। तो क्या होती है ज्वालामुखी तपस्या? क्योंकि हनुमान अगर आज पूज्य है तो किस कारण से पूज्य है? उसने इतने सारे कर्तव्य किए हैं। उसकी कहानी ऐसे आती है कि बालपन में ही उसने क्या किया, सूर्य को निगलने की कोशिश की। तो कौन सा सूर्य है? एक्चुअली ज्ञान सूर्य। और बालपन में सूर्य को निगलने की कोशिश की, अर्थात कम समय में अधिक ज्ञान को हप करने वाला वो ब्राह्मण था। लेकिन अर्थात जिज्ञासा वृत्ति थी कि हर चीज को मैं जान लूं। तो इसके बाबा कहते मुरलियों को क्या करो, खूब अध्ययन करो। मुरली ही हमारे जीवन का सार है। और इसीलिए हमने आपको कहा था आपके टॉपिक कहीं और से नहीं होंगे, मुरली में से ही होंगे। क्योंकि उसको एक एक पढ़ते जाएंगे, उनके रहस्यों को समझते जाएंगे, अज्ञान का आवरण टूटता जाएगा, तो ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाना सहज हो जाएगा। तो उसके सूर्य को निगल लिया, वास्तव में वह अर्थ है कि ज्ञान को उसने बहुत कम समय में समझ लिया। परंतु फिर ये आता है कि उसको श्राप मिल गया। किस कारण से श्राप मिल गया? तो कहा उस सूर्य को निगलने की कोशिश की, तो उसी चक्कर में फिर उस बीच में तो उसको बताते कि इंद्र ने भी प्रहार किया वज्र से, और इसीलिए उसका जो चेहरा है, क्योंकि यहां पे आके वो उसका वज्र का प्रहार हुआ तो जबड़ा बिगड़ गया, तो इसलिए कहते नाम इसलिए हनुमान है, हनुमाना जबड़ा, तो हनुमान माना जिसका जबड़ा बिगड़ा हुआ है। और हमारे बाबा तो ये कहते हैं कि जिसने अभिमान का हनन किया है वो हनुमान। तो उसको थोड़ा वो अभिमान आ भी गया था और इसीलिए वो क्या करता था, मतलब ज्ञान का थोड़ा दुरुपयोग करना उसने आरंभ किया। तो उसको किस प्रकार से दिखाते हैं कहानियों में, तो कहते हैं कि ऋषि जब तपस्या करते थे तो डेफिनेटली वो आसन बिछाते थे, तो जब समझो उठ गए तो आसन उठा लेता था, ऊपर टंगा देता था। कमंडल होते हैं ऋषियों के, पानी भर के रखते, कमंडल उठा के पानी फेंक देता था। हाँ, उनकी लंगोट उठा के कहीं छुपा देता था, फाड़ देता था। तो ऋषि उससे परेशान हो रहे थे और तब माता पिता तक उसकी कंप्लेन गई। माता पिता ने खूब समझाया कि शरारती तो था, उसने कहा कि हमारे बस की तो बात नहीं है, आप ही कुछ करो। और तब उन्होंने इस बात को भांप लिया कि इसे अपनी प्राप्तियों का अभिमान है और अगर वही सब उसको भूल जाए तो काय का अभिमान करेगा। और इसीलिए कहते हैं उसको श्राप मिला कि हनुमान अपनी शक्तियों को भूला हुआ रहेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, कोई इसको अन्य याद दिलाएगा तो इसकी शक्तियां जागृत हो जाएगी। और कब जरूरत पड़ी थी, कब जरूरत पड़ी थी, राम को सीता को वापस लाना था और भक्ति मार्ग के हिसाब से राम माना भगवान, अर्थात भगवान के कार्य में जरूरत पड़ी थी। और भगवान के कार्य के लिए अगर शक्तियों का उपयोग हो तो वो सदुपयोग है, लेकिन किसी के साथ छेड़खानी के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए अगर हम ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं तो वो ज्ञान का क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। तो इसीलिए दुरुपयोग के समय उसको क्या मिल गया, श्राप मिल गया। और साथ में ये कह दिया कि ये श्राप खुल जाएगा कब, जब कोई दूसरा उसे याद दिलाएगा। और जब जरूरत पड़ी, जामवन ने उसको याद दिलाया और उसकी शक्तियां उसको स्मृति में आ गई और भगवान के कार्य में लग गया, सीता को खोजने चला गया। और इसलिए हनुमान की बहुत पूजा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान नहीं कर सके, ऐसा कोई संकट नहीं है जिस संकट से हनुमान हमें बाहर निकाल, क्योंकि बहुत कहानियां उसमें आती, जब जब संकट आया, वो पूरी यात्रा जब तक सीता वापस नहीं आए, संजीवनी बूटी लेकर आया, सुषेण वैद्य को लेकर आया, लंका जाने के लिए भी सेतु का निर्माण करना पड़ा, फिर वो गया भी है तो फिर समुद्र से निकली हुई सिंहिका आदि ने भी बहुत बहुत रास्ते में बाधाएं खड़ी की, काफी बाधाओं को पार करके वो वहां पहुंचा है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में इसका बहुत गायन है और बाबा कहते वो तुम्हारी यादगार है। और बाबा हमेशा कहते पांच स्वरूपों का अभ्यास करो, पहला अनादि स्वरूप, परमधाम में जो हमारा पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप है, दूसरा वहां से उतर के सत्युग में आते हैं आदि स्वरूप देव और देवी के रूप में, और उसके बाद कापर में, मतलब कि द्वापर युग में, मध्य, जिसको मध्य कहते बाबा, मध्य में, क्योंकि मंदिर बनने शुरू हो गए फिर, तो पूज्य स्वरूप, और फिर चौथा संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, और फिर फाइनल फरिश्ता स्वरूप। तो जब बाबा कहते अपने इन स्वरूपों का अभ्यास करो, तो अगर मैं पूज्य स्वरूप का अभ्यास करूं तो डेफिनेटली मुझे उस पूज्य स्वरूप की विशेषताएं मालूम होनी चाहिए ना, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो तभी बाबा ने कहा कि ये जो हनुमान हमारा स्वरूप है, बहुत सारी बाधाओं को क्रॉस कर करके भी लास्ट में क्या बच जाता है, मैंपन, मेरापन, है ना। ब्राह्मण जीवन में अनुभव होगा बहुतों को, कि जैसे हम ब्राह्मण बने, बहुत सारी बातें जो आसुरी थी छूटती गई धीरे 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 धीरे, लेकिन मैंपन को छोड़ना बड़ा भारी होता है, होता है नहीं होता है? लेकिन जब तक ये मैंपन नहीं छूटे, तब तक आसुरी संस्कारों का खात्मा हुआ है ये समझा नहीं जाएगा। और इसीलिए भट्टियों में आपको समय दिया जा रहा है। हाँ, कई बार प्रश्न उठता है कि क्या चेकिंग करें हम अपने, तो ये चेकिंग के लिए हमें इन बातों को समझना पड़ता है, क्या चेकिंग करना है भीतर में, कि कोई आसुरी संस्कार अभी भी विद्यमान तो नहीं है। और बहुत प्रैक्टिकल अगर कहें तो बाबा ने और एक पुरली में बात कही, लगाव और पुराना स्वभाव जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लंका खत्म नहीं होगी। तो ये लगाव और पुराना स्वभाव, ये पूछ, तो लगाव को और प्रैक्टिकल अगर करें तो जैसे आजकल तेल की चीजें ज्यादा नहीं खानी है, हा? सेहत के हिसाब से, तो फिर कहते हैं कि बनेगा कैसे, बर्तन में तेल नहीं होगा, चिकना नहीं होगा तो वो तो चिपक जाएगा, तो फिर क्या करते हम, नॉन स्टिकिंग बर्तन लेके आओ करते नहीं करते हैं, तो नॉन स्टिकिंग बर्तन में क्या होगा, चिपकेगा नहीं। तो ये हमें अंदर में चेकिंग करनी है, कौन कौन सी मेरे जीवन में बातें हैं, जहां जहां मुझे नॉन स्टिकिंग बनने की जरूरत है, कहां कहां मेरे लगाव है, कहां कहां मेरे झुकाव है, कहां कहां मैं प्रभाव में आ जाती हूं। तो अपने आप को नॉन स्टिकिंग बनाना है, और कहां कहां मैं प्रैक्टिकल में रिएक्शन में आ जाती हूं, नॉन रिएक्टिंग, तो वो तो चेक हो सकता है, नहीं हो सकता है इसीलिए। हाँ, रोजमर्रा के जीवन में इंटरेक्शन में हम देखते हैं ना अपने आप को कि मैंने कहाँ रिएक्ट कर डाला, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था परंतु मेरे से हो गया। यही तो चेकिंग करनी है बैठ के, कि नॉन रिएक्टिंग, नॉन स्टिकिंग कहाँ तक बनी हूं मैं। और साथ साथ, क्योंकि बात है, बाबा ने कहा ज्वालामुखी तपस्या, तो एक शब्द हम यूज करते हैं अंतर्मुखी, एक शब्द यूज करते हैं बाहरमुखी। अब बाहरमुखी का अर्थ क्या होता है, बाहरमुखी का क्या अर्थ होता है, बाह्य जगत में इंद्रियां विचरण कर रही है हमारी, तो हम बाह्यमुखी हैं। एक होता है सूर्यमुखी, नहीं, सूर्य फ्लावर होता है, तो क्या कहते हैं सूर्यमुखी, क्यों कहते हैं उसको, सूर्य की तरफ उसका फेस होता है तो वो खुलता है ना, तो जिस तरफ हमारा ध्यान हो उसको मुखी कह दिया। बाहर मुखी माना बाहर की तरफ है, और अंतर्मुखी माना, और ज्वालामुखी माना, इसको अभी हम अच्छी से समझेंगे, ठीक है, इस बात को हम अच्छी से समझेंगे कि देखो जब तक हम ब्राह्मण नहीं बने थे तो मैं और मेरा यही था, ये एक मैं है और एक मेरा, लेकिन दोनों ऐसे चिपके थे कि इसको ही मैं बोल रही हूं और इसको ही मेरा बोल रही हूं, ठीक है। लेकिन हम ब्राह्मण बने, बाबा का ज्ञान लिया, बाबा ने कहा इनको अलग करो, मैं अलग अस्तित्व है, मेरा अलग अस्तित्व है, मेरा यानी शरीर और मैं माना आत्मा। ज्ञान में थोड़े और आगे चले तो पहले पता चला कि सब कुछ स्थूल शरीर होता है, फिर पता चला नहीं, स्थूल शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ज्ञान में और आगे चले बोले नहीं, इधर अंदर में एक सूक्ष्म शरीर भी है, समझ में आ रही बात, स्थूल शरीर उसके अंदर और उसके अंदर आत्मा। अब ये स्थूल शरीर माना इंद्रियां, इंद्रियों से बाह्य जगत में झांक रहे थे तो क्या हो गया, बाह्यमुखी। अब तपस्या के नाम पे कहा गया अंतर्मुखी बनो, तो हमने इंद्रियों को इधर से हटाया, उसको यू टर्न दिया और इधर लगाया। तो अब ये कहां लगा अंदर जाके, इसकी तरफ गया या इसकी तरफ गया? अंदर दो बातें हैं, स्थूल शरीर के अंदर तो दो बातें आ गई ना, सूक्ष्म शरीर भी है और आत्मा भी है। क्यों बाबा को बोलना पड़ रहा है ज्वालामुखी? अंतर्मुखी भी बताया लेकिन ज्वालामुखी भी बोलना पड़ रहा है। तो अंतर्मुखी होने से क्या हो रहा है? तो ये जो भीतर में सूक्ष्म शरीर है, ये है हमारे मन बुद्धि का ही प्रतीक है, ठीक है? तो अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और हिंदी में क्या कहते हैं? चेतन और जो भी बोलते हो। कॉमन भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? बाबा का कई बार आपने सुना होगा मुरली में, न मन में न चित्त में। सुने हैं दो शब्द, न मन में था न चित्त में था। अहो प्रभु इतनी बड़ी कृपा कर दी। क्या मांगते थे प्रभु से और उसने कहा कि सतयुग की भाषा ही ठीक, इसी के ध्यान में भक्ति में भगत बन के भगवान को जितना याद किया मांगा, कभी ऐसे दुनिया की भाषा ही मांगी थी क्या? लेकिन भगवान ने दे दिया। और तभी साकार बाबा कई बार कहते हैं मुरलियों में, न मन में न चित्त में। तो ये सामान्य भाषा है किसके लिए? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के लिए। इसको मैं और खुलासा करूं, सिक्का देखा है सभी ने? सिक्का, सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, कौन कौन से? हेड एंड टेल, अंग्रेजी, हिंदी चित और पट। चित किसको बोलेंगे, पट किसको बोलेंगे? चित जो राजा वाला, मतलब जहां चित्र है, राजा वाला मनु चित्र। और पट जा अंक लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये मन के भी दो पहलू हो गए ना, आपने बोला ना अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो ये भी मन एक है लेकिन उसके दो पहलू है, जैसे सिक्का एक है लेकिन दो पहलू है। तो ये एक है लेकिन इसके दो पहलू है, एक को मन कहेंगे एक को चित्त कहेंगे। कौन से वाले? अभी ये सिक्के के इसमें तो आपने कह दिया, जहां राजा है वो चित्त है और जहां अंक है वो पट है। अब यहां पे इधर शरीर है इधर आत्मा है, बीच में इस समय के लिए इस मन को क्या समझ लो, एक सिक्का समझ लो, ठीक है? यहां पे राजा वाला हिस्सा कौन से तरफ का होगा, अंक वाला हिस्सा कौन से तरफ होगा? एक साइड डेफिनेटली राजा वाला होगा और एक साइड अंक वाला होगा। तो एक इस साइड रहेगा ना, ये एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो राजा वाला किस तरफ और अंक वाला किस तरफ? राजा वाला, बिल्कुल राइट। और पट माना अंक वाला, इसके तरफ। अब ये जो चित्त जो आत्मा के करीब है, बाह्य जगत से इंद्रियों के माध्यम से डेटा आ रहा है मन के पास, शरीर की तरफ है ना वो, तो इसलिए शरीर की इंद्रियां कहां लाके देगी डेटा? मन के पास लेके देगी। लेकिन मन के बाद फिर वो कहां जाएगी, स्टोर कहां होगी? चित्त में ही होगी ना सब कुछ। देखो खाना खाने बैठे, थाली में लिया सब कुछ, एक कटोरी दाल भी है, सब्जी भी है, दही भी है, पूड़ी भी है, पकोड़ा भी है, रोटी भी है, पुलाव भी है, सादा चावल भी है, सब कुछ थाली भरी पड़ी और ये पूरी थाली यहां जाने वाली है, परंतु यहां से जाने वाली है, ये सीधा ऐसे नहीं जाने वाली है। तो ये पूरी इधर जाएगी पर ये पूरी एक साथ इधर नहीं जाएगी, इंस्टॉलमेंट में जाएगी, एक एक करके जाएगी ना। समझ में आ रही है ना बात? तो मन में डेटा आता जरूर है लेकिन वहां वो ठहरता नहीं ज्यादा समय तक, क्योंकि पट है वो। पट माना ब्लैक बोर्ड, स्कूल में पढ़ते थे ना, श्याम पट पे गुरुजी ने कुछ लिखा, हाँ, जिसको हिंदी में ब्लैक बोर्ड बोलेंगे। तो यहां से इंद्रियों ने लाया, इस पे मन को भेज दिया, लेकिन इसकी लिमिट, अंक माना लिमिट, अंक माना लिमिट, कितना लिखा रहेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, आखिर जो अंक लिखा है माना लिमिट, अदरवाइज गणित में जो लिमिट से पार है उसको इन्फिनिट बोल दिया, अनंत बोल दिया। तो जब तक अंक है माना लिमिट है ना, चाहे वो छोटी लिमिट हो चाहे बड़ी लिमिट हो, पर लिमिट है वो। तो ये लिमिट होता है, लिमिटेड टाइम के लिए ही रख सकता है, लिमिटेड चीजों को ही रख सकता है। जैसे क्लास आरंभ हुई, उस समय जो पहली लाइन बोली थी, काफी चलते चलते वो भी उसको बोलेंगे, पहली लाइन क्या थी सोचना पड़ेगा ना, लेकिन ये लाइन के पहले क्या लाइन थी तो फटाफट बोल देंगे, समझ में आ रही बात। तो बहुत ज्यादा देर तक भी नहीं रख पाता है और बहुत ज्यादा चीज को भी नहीं रख पाता है। वो कहां भेज देता है, चित, माना ही जिसको बोला कि अंदर वाला मन, वो क्या है, अनलिमिटेड का ना, पूरी थाली चले जाएगी ना यहां पे, पूरा चला गया। ये तो सिर्फ एक थाली की बात है, जब से जन्म लिया है तब से क्या क्या नहीं किया है, सारा स्टोरेज है, और सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बाबा तो कहते हैं पूरे 84 जन्मों का, बाबा को वंडर होता है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का सब कुछ भरा हुआ है ना। तो इसमें जो चित्त में बातें गई है, रोज जो जीवन में घटनाएं घट रही है, वो सब कहां जा रही है। तो जब हम अंतर्मुखी होते हैं, हम अंतर्मुखी तो हुए इसलिए थे कि मैं सोल कॉन्शियस होकर गॉड कॉन्शियस बनकर माना उसके साथ कनेक्ट होने वाली हूं। पर होता क्या है, यहां से बाहर मुखी से अंदर तो आ जाती हूं, यहां अटक जाती हूं, यही चल रहा होता है यहां की। और इसलिए बाबा को बोलना पड़ा ज्वालामुखी तपस्या, और ज्वाला माना क्या, ज्योति, हाँ, आग जिसमें दिखाई पड़ता है, दहन दिखाई पड़ता है। तो इधर कौन है, आत्मा, हाँ, इधर आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है ये, तो इधर बीच में इतना सारा है ना, इसलिए इसकी पूरी लाइट हमें अनुभव नहीं होती है। लेकिन अगर मैं यहां से जंप मार के इधर आ जाऊं तो दिखेगी ना, तो कहा ज्वालामुखी बनू, समझ में आ रही बात। अब यहां से जंप कैसे मारूं मैं इतना, उसी के लिए कहा एकांत में बैठो, चेकिंग करो, कहां का मेरा स्टिकिंग नेचर है, कहां का मेरा रिएक्टिंग नेचर है, उसको रियलाइज करो। एक बार रियलाइज हो जाए फिर दृढ़ संकल्प की, हां मुझे इन बातों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और बिल्कुल ऐसे ऑब्जर्वर बनकर, जैसे फिल्म के पर्दे पर वो फिल्म आती रहती है और हम उसमें थोड़ी होते हैं, हम उससे अलग होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। तो एकांत में बैठकर बातें आ रही हैं, उन बातों में भी लग नहीं जाओ। दो बातें हैं, एक है लगाओ, एक है टकराओ। टकराओ माना, क्योंकि हमें क्या करना है, विजय माला में आना है। सिमरणी बाबा कहते हैं ना, विजय माला में कौन आते हैं, आपस में जिन्होंने संस्कारों का मिलन किया है। हर माला का मणका जो है दूसरे मणके से पास में है, लेकिन कोई भी चिपका हुआ नहीं है। इसीलिए हम आपस में मिलजुल के रहे तो जरूर, पर चेकिंग करें कहीं लगाव तो नहीं है हमारा, कहीं झुकाव तो नहीं है हमारा, कहीं प्रभाव में तो नहीं है। नहीं तो कई बार बाबा कहते हैं लोहे की जंजीरें तो तोड़ के आ गए और यहाँ आके सोने की जंजीरों में बंध जाते हो। ये जैकिंग करनी होती है, क्योंकि माला के मणके आपस में मिले हुए जरूर है पर चिपके हुए नहीं है। इसलिए लगाओ, झुकाओ, प्रभाव ये सोल कॉन्शियस स्टेज की रिजल्ट नहीं है, ये बॉडी कॉन्शियस की रिजल्ट है। और साथ साथ मणका मणके से मिला हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है वहां पे, अर्थात टकराव भी नहीं हो। अगर टकराव है माने डेफिनेटली बॉडी कॉन्शियस है, तो ये हमें चेक करना होता है कि कहाँ कहाँ मुझे परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और जब ये रियलाइजेशन हम बैठ के करते हैं और उस समय भी जो अंदर में चल रहा है, हम एकांत में बैठे मेरे सामने सब सीन आ रही है, तो मैं साक्षी होकर देखूं, वहां पर भी हम लगाव में लग जाते हैं। हाँ, किसी के साथ कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल हुआ नहीं, मन ही मन में फिर वो ऐसा बोलेगी, फिर मैं ऐसा बोलूंगी, फिर वो ऐसा बोलेगी, मैं ऐसा बोलूंगी, और झगड़ा वहीं पे हो जाता है, प्रैक्टिकल में कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहां पे ही टकराव में आ जाते हैं और यहां पे ही लगाव में आ जाते हैं, और इसलिए ज्वाला की तरफ कहां जाएगा हमारा ध्यान। यही शिकायत थी ना कल परसों जिसने भी प्रश्न पूछा, तो वहां पर भी साक्षी हो जाए, है मेरे जीवन में जो कुछ भी है पर साक्षी होकर देखूं मैं। तो जब साक्षी होकर देखेंगे तो पर्दे पर जो सीन आएगी आके निकल जाएगी, और फिर मैं अपना ध्यान कहां ले लूं, सीधा ज्वाला की तरफ। और जब मैं ज्वालामुखी अर्थात ज्वाला की तरफ मेरा अब ध्यान हो गया, अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट प्योर, उसमें कोई भी बॉडी कॉन्शियसनेस अभी मिक्सचरिटी नहीं है, तो जैसे ही मैं अपने स्वयं के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती हूं, बाबा मुझे खींच लेता है। कैसे, जल का स्वभाव है अपने सोर्स सागर की तरफ बहते जाना, स्वभावतः वह अपने सोर्स की तरफ बहता जाएगा। अग्नि का स्वभाव है वो अपने सोर्स की तरफ लपकती है ना? आप चलाओ कैंडल, गिर भी जाए तो भी उसकी लौ की दिशा क्या रहेगी। तो जब मैं उस शुद्ध स्वरूप में आ जाती हूं, आत्म स्वरूप में, तो फिर बाबा की तरफ मैं अपने आप खींचती चली जाती हूं। और जब मैं उसके पास खींचती चली जाऊंगी, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा किसकी संतान हूं, परमात्मा की, वो मेरा सोर्स है, तो मैं उसकी तरफ खींचती हुई परम धाम में पहुंच जाऊं। और जब मैं उसके साथ परम धाम में पहुंच जाऊं, कंप्लीट कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज है हमारी, वहां पे अभी कोई संकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं है। आज का अगर वरदान याद करें तो क्या था आज का वरदान? बोलो बोलो, किसी को याद नहीं? नहीं, पूज्य स्वरूप नहीं है आज का, मास्टर ज्ञान सूर्य भव है आज का। सुख स्वरूप बन विश्व को सुख की किरणें फैलाने वाले देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। और उसके विश्लेषण में आया, जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, जैसे बाबा सुख का सागर है, ऐसे तुम क्या करो, ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बन जाओ। सिर्फ वर्णन नहीं करो गुणों का। तो ये जो हम जब नए बाबा के बच्चे बनते हैं, तो डेफिनेटली नए है माना, स्कूल में बच्चा गया तो एबीसीडी तो पढ़ेगा ना पहले, कि सीधा नाम पढ़ना शुरू करेगा एबीसीडी। तो हम भी जब नए ज्ञान में आते हैं तो एबीसीडी सिखाई जाती है कि अपने आप को बोलो, मैं कौन हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। लेकिन एबीसीडी कब तक पढ़ते हैं? कब तक पढ़ते हैं एबीसीडी? कब तक पढ़ी जाती है? हाँ, स्कूल की रीति से पढ़ा, बताओ ना। तो स्कूल में मास्टर कहेगा इसको स्कूल भेजना बंद कर दो। देखो, समझो एक साल फेल हो गया, दूसरी साल बैठने के दिया जाएगा, दूसरे साल भी फेल हुआ, फिर तीसरे साल बैठ, तो फिर आखिर तो डिसीजन लिया जाएगा ना कि ये पढ़ने लायक नहीं है बच्चा। कहने का तात्पर्य है कि बेसिक चीजों भी कुछ समय तक सीख लेते तो सिर्फ बेसिक ही बेसिक थोड़ी रखना होता है, आगे बढ़ना होता है या नहीं होता है। तो अभी तक भी अगर मैं सिर्फ योग करती हूं और यही कहती रहती हूं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, परंतु वह शांति की ना अनुभूति है, होती भी है कब? जब कॉमेंट्री के साथ योग कर रही हूं। लेकिन कॉमेंट्री के साथ योग करके उठे नहीं, पता नहीं शांत स्वरूप कहां चला गया। तो इसीलिए बाबा ने कहा, मैंने बताया ना कि ज्वालामुखी तपस्या शक्तिशाली याद, कि जिसमें सोचना स्वरूप की आवश्यकता नहीं है, स्मृति स्वरूप की आवश्यकता है। अर्जुन ने भी कितने सारे प्रश्न किए कृष्ण को, पूरे 18 अध्याय प्रश्न किए जा रहा है, उधर से आंसर आ रहा है, फिर नया प्रश्न खड़ा हो रहा है, फिर आंसर आ रहा है, फिर नया। लेकिन आखिर में जाके वो क्या कहता है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति में स्थित हो गया अभी मैं। वो हमारा अंतिम स्थिति है, सोचना स्वरूप नहीं। सोचना स्वरूप में तो प्रश्न और उत्तर चल ही रहे थे उसके, स्मृति स्वरूप, क्योंकि आदि ही तो मोह से शुरू हुई है उसकी। युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, दोनों पक्ष सेनाएं खड़ी हो गई है, और उस समय कहता है ये तो मेरे दादा है, ये तो मेरे चाचा है, ये तो मेरे मामा है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तो किस काम का। तो मोह जागा है ना, और उसी मोह को तोड़ने के लिए प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, मतलब वो स्वरूप नहीं बना है, एक एक आंसर आ रहा है पर उसका मोह टूटता नहीं, स्मृति स्वरूप बनता नहीं, और इसलिए करना पड़ता है। लेकिन विजय तब होती है जब स्मृति स्वरूप बनते हैं। तो परम धाम में चले जाए हम जंप लगा के, पहले साक्षी स्थिति में देखो अंतर्मुखी तो हुए, लेकिन वो सब जीवन की बातें रील चल रही होती है, वह रियलाइज करो कहां कहां मुझे नॉन स्टिकिंग और नॉन रिएक्टिंग बनने की आवश्यकता, क्योंकि वहां सीन दिखेगी ना, मैं रिएक्ट हुई थी यहां पे, यहां पर मेरा इसके साथ लगाव हो गया, दिखेगा ना सीन, ईमानदारी से चेकिंग करेंगे तो। और जब उससे पार होके मैं इस ज्वाला के तरफ ध्यान करूंगी तो ये हो गया ज्वालामुखी। तो एक अर्थ ज्वालामुखी का ये हुआ, और फिर ज्वालामुखी हूं तो मैं उसके तरफ खींच जाऊंगी, क्योंकि अग्नि की लपट सूर्य की तरफ जाती है, तो मुझे बाबा अपनी तरफ खींचेगा, मैं परम धाम में जाऊंगी, और वहां जाकर के उस स्मृति स्वरूप में रहना है मुझे। इसलिए मुरलियों में ये आता है कि परम धाम में आकर मेरे पास बैठ जाओ। चार धामों के लिए बताता है, यहां ऐसी बात करो, यहां ऐसी बात करो, यहां ऐसी बात करो, परम धाम के लिए सीधा कहता है मेरे पास आकर बैठ जाओ, बाप समान स्थिति में बैठकर सकाश दो। तो आप कहेंगे फिर सकाश के लिए भी मुझे संकल्प चलाना है, बात सूर्य की ही चल रही है, तो इस सूर्य को देख ले। ये सूर्य सिर्फ उपस्थित हो जाता है नीले आसमान में, उसके बाद वो कहता है अपनी किरण को, ए किरण इसके पास जा और इसको प्रकाश दे। हाँ, कहता है अपने अपनी गर्मी को, कहता है गर्मी इधर जा और इसको तपन दे, ए शक्तिशाली किरण जा और इस गंदगी को मिटा, कहता है क्या? लेकिन होता है कि नहीं होता है काम? प्रकाश भी मिल जाता है, तपन भी, उष्मा भी मिल जाती है और गंदगी कीड़े मकोड़े भी नष्ट हो जाते, सिर्फ उस स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता होती है। लेकिन वो स्थिति बने उसी के लिए है चेकिंग, नॉन स्टिकिंग, नॉन रिएक्टिंग। दिन भर के मेरे व्यवहार जगत में मैं कितना सारथीपना यूज करता हूँ, सारथीपना माना ही मैं इस देह को मैं चला रही हूँ, ऐसे नहीं कि इंद्रियां मुझे चलाए, मुझे चला रही, उसकी रिजल्ट ये है ना कि हमें कहना पड़ता है बोलना तो नहीं था पर बोल दिया, माना इंद्रियों ने मुझे क्या कर दिया, वशीभूत कर दिया, आउट ऑफ कंट्रोल। तो मेरा कंट्रोलिंग पावर किधर है? तो फिर रूलिंग पावर कहां से आएगी? और जब कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं, विश्व राज्य अधिकारी कहां से बनेंगे? स्वराज्य अधिकारी नहीं बने तो विश्व राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, और विश्व राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, जो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे उनके ही तो मंदिर बनने वाले हैं, मंदिर तो उनके ही बनने वाले हैं ना, लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण। तो इसके लिए हमें ये चेकिंग करनी है अपनी, और समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाते चलो, पचाते चलो बातों को और समेटते चलो। समेटते चलो कैसे? जो चीजें वे मतलब असार है उनके लिए वैराग्य वृत्ति को विकसित करो, और जो चीजें मेरे काम की है उसके प्रति अनुराग। क्या किया हनुमान ने? हनुमान की पूंछ कैसी थी? बना पूंछ पूंछ की पूंछ। तो आज हम भगवान के बन जाते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि दुनिया में भी देखो जो सूर्य होता है ना, तो सूर्य की तरफ अगर मेरा मुख होगा तो छाया कहां बनेगी? पीछे। लेकिन अगर सूर्य के उल्टे अगर मैं खड़ी हूं तो फिर छाया कहां बनेगी? मेरे सामने सामने। तो अगर मैं और मेरापन में लगी हुई हूं, इससे क्या साबित होता है? क्लियर हो रही बात? और हनुमान ने क्या किया? यहां पर राम सीता, सामने कौन है? मेरे भगवान है, और पीछे क्या है? पूछ है, और पूछ माना प्रतिष्ठा, कि भगवान के बनेंगे। भगवान ने स्वयं सम्मान की माला पहना दी हमें, कितने सारे सम्मान दिए, प्रतिष्ठा तो उसने ही दे दी हमको बहुत बड़ी, और उस प्रतिष्ठा के कारण फिर जगत में भी हमारी प्रतिष्ठा होती है भगवान के कार्य में लगे हैं तो। लेकिन फिर उस प्रतिष्ठा के चक्कर में अगर हम उसमें फंसे रह जाते, अर्थात जो उसका स्थान पीछे होना चाहिए, और इसीलिए पूंछ पीछे है। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा, माना हम पूंछ को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको पीछे लेके जा रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो लंका जलेगी नहीं, हमारे आसुरी संस्कार खत्म होने वाले नहीं है। और इसलिए हमेशा हमेशा जो कहा कि नहीं लगता है मन, प्रायोरिटी किसको देना है ये डिसाइड कर लेना है। तो प्रायोरिटी किसको देना है? भगवान का बनने के बाद जो प्रतिष्ठा मिल रही वो, या भगवान जिसके कारण प्रतिष्ठा मिल रही है और फिर उसको छोड़ दिया तो जो मिली हुई प्रतिष्ठा है वो भी क्या हो जाएगी? कहा ना कि सूर्य के पीछे अगर मुंह कर दे, मतलब पीछे और मैं इधर कर दूं, तो फिर परछाई मेरे सामने आ जाएगी और उसको ही पकड़ते रह जाएंगे, और वो कभी पकड़ में आने वाली कभी भी नहीं आएगी। और इसलिए बाबा हमें समय समय, जैसे उस दिन भी हम कह रहे थे कि नया तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, अभी सिलेबस रिविजन हो रही है, संदेश में बस चेतावनियां मिल रही है, कि जल्दी से जल्दी अपने संपूर्ण स्वरूप की तैयारी कर लो, बाप समान बन जाओ। तो बाबा को सामने रखें, सोचता स्वरूप से स्मृति स्वरूप में आ जाएं और वहां बैठने से बाबा की किरणें मेरे ऊपर काम करेगी। बाबा के किरणों का प्रवाह, किरणों का वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर काम करेगा और मेरे, क्योंकि लगन की आग लगाई ना मैंने, कि मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ एक बाबा और मैं और कुछ नहीं, तो वो लगन की अगन क्या करेगी, मेरे आसुरी संस्कारों को जलाएगी। और जब आसुरी संस्कार जल जाएंगे तो फिर उस आत्मा से रेडिएट क्या होगा, सदा के लिए जो होगा वही रेडिएट होता है ना, जो होगा वही रेडिएट होता है ना। अब यहां पे वो ज्वाला क्यों नहीं आ रही है हमारी, अभी आसुरी संस्कार बीच में, क्योंकि ज्वाला इधर है, इधर चित्त है, चित्त में बहुत सारा कचरा पड़ा है, अब इसको यहां से पास होके आना है, फेस पे अगर दिखाई दे इसको यहां से पास होना है, लेकिन ये चित्त रूपी दर्पण तो बहुत मेला लगा पड़ा है, गंदा लगा पड़ा है, तो ये वाली ज्वाला आए तो कैसे आए बाहर। तो बहुत सारे बाबा चेक पॉइंट्स देता है कि कैसे हम अपने आप की चेकिंग करें, कि ये ज्वालामुखी, यहां ज्वाला दिख रही मुख में, वो ज्वाला मतलब वो चमक रूहानियत की, अध्यात्म की वो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सेवा तो उससे होनी है ना, समय आएगा वाचा सेवा कुछ भी काम नहीं करने वाली है, सेवा किससे होने वाली है, चेहरे और चलन से होने वाली है। तो ऐसे करीब बैठकर शरणागति जिसको कहते हैं सही अर्थों में, शरणागति मतलब क्या होता है, जिसकी शरण में आ गए, अब हमें नहीं करना है, उसने करना है हमारे लिए गति, समझ में आ रही बात, तो हम उसकी शरण में पहुंच गए, अब उसकी किरणें गति करके मेरे पास आएगी, मेरे बोलने से नहीं आने वाली है, वो अपने आप आएंगी, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैचिंग है इस समय, उसका तो रबड़ पहले से निकला हुआ है, पर हम भी अभी क्या है, बिना रबड़ वाले हैं इस समय, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैचिंग है, उसका करंट सर आ रहा है, और इसका साइंटिफिक लॉजिक जो मैं आपको बताऊं, कि कहते हैं संगीतज्ञ जो होते हैं वो बताते हैं कि एक कमरा जो खाली हो उसके एक कोने पर एक वीणा रख दो और दूसरे कोने में दूसरी वीणा रख दो, और एक वीणा को कोई एक्सपर्ट संगीतज्ञ उसकी तारों को छेड़े तो उसमें से सुर निकलेगा, और सुर निकलेगा माना वाइब्रेशन निकलेंगे, वो वाइब्रेशन फैलते फैलते चलते चलते दूसरे कोने में रखी हुई वीणा को छुएंगे और उसमें से भी अब वैसा ही संगीत, वैसा ही स्वर निकलेगा, ये संगीतज्ञों का अनुभव है। ऐसे ही दुनिया के अंदर एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, सिंक्रोनिसिटी जो हम यूज करते हैं मोबाइल में सिंक्रोनाइज करना, तो सिंक्रोनिसिटी उसमें बताते हैं कि एक वैज्ञानिक था जो एक राजा के घर में जाके मेहमान बना एक दो रात के लिए, बात 150-250 साल पहले की है, तो राजा माना किला, माना शहर से दूर, माना एकांत वहां बहुत उपलब्ध होता है, तो राजा ने उसको जो कमरा दिया उसके कमरे में दो दीवार घड़ियां लगी हुई थी, और डेफिनेटली उस समय कौन सी घड़ियां हुआ करती थी, पेंडुलम वाली। इसने उन दोनों घड़ियों को ध्यान से देखा और देखने पर पता चला कि दोनों घड़ियों में चाहे वो सेकेंड काटा है, चाहे वो मिनट का काटा है, चाहे वो घंटे का काटा है, चाहे पेंडुलम की पोजीशन है, बिल्कुल सेम डिटो। कुछ भी रिंचक भी कोई अंतर नहीं। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे? और चूंकि वैज्ञानिक है ना, तो दिमाग चलता है। तो इसने क्या किया फिर दूसरी रात में, कि रात को जानबूझकर एक घड़ी को बंद किया। दोनों घड़ी बड़ी थी, लेकिन कंपेरेटिवली एक छोटी थी एक बड़ी थी। तो एक घड़ी को बंद किया तो डेफिनेटली जब सुबह उठेगा तो दोनों में अंतर दिखेगा। तो सुबह उठने के बाद उसने जो जिस घड़ी को बंद किया ना, वापस सेटिंग किया, चालू किया और सेट किया टाइम, लेकिन पर्पसली जानबूझकर अंतर रखा 5-10 मिनट का, क्योंकि उसे स्टडी करनी थी कि क्या ये संयोगवश ऐसा हो रहा है या इसके पीछे कोई विज्ञान काम कर रहा है। तो इस स्टडी के लिए उसने ऐसा किया और उसने देखा 24 घंटे होते होते दोनों में जो टाइम गैप था खत्म हो गया। और इसको लगा कि ये संयोग नहीं, ये विज्ञान है, और उसने इसको हार्मनी नाम देकर छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं बाद में 50-75 साल पहले किसी साइकोथेरेपिस्ट ने, कार्ल गुस्ताव जुंग, आप नेट पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे मिलेगा, उसने पूरा जो पीएचडी जब करते हैं तो पूरा एक पेपर बनाना पड़ता है, पोती-ती शादी जो भी करना पड़ता है, सिस्टमैटिकली उसने इसको रिसर्च किया और उसको नाम दिया लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी। और उसने ये कहा कि लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी सिर्फ वीणाओं के केस में कार्य नहीं करता है, सिर्फ घड़ियों के केस में काम नहीं करता है, लेकिन जीवन के हर डायमेंशन में ये एप्लीकेबल है। और जब हमने इसको पढ़ा तो हमें लगा शायद बाबा इसीलिए कहते हैं बच्चे परमधाम में आकर सिर्फ मेरे पास बैठ जाओ। उसके बाद वो लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, क्योंकि एक बड़ी घड़ी थी एक छोटी थी, उसने क्या स्टडी की और कि बड़ी घड़ी के पास रात को जाके कान लगाया, कान लगा के देखता है तो इसकी टिक 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 वाइब्रेशन निकल कर इस दीवार को होते हुए इस छोटी घड़ी की तरफ जाते हैं और इसको प्रभावित करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये उसकी बराबरी पर आ जाए। तो बाबा भी यही करता है परमधाम में, शायद वो इसीलिए हमें कहता है आकर के बैठ जाओ। तो ये है ज्वालामुखी तपस्या, जिससे ही हमारे आसुरी संस्कार जलते हैं, जिससे ही फिर हमारे जीवन से, चेहरे से, चलन से वो रूहानियत की झलक आती है और उसी से फिर सेवा अपने आप होती है। तो मैं पन जो ब्राह्मण परिवार में बढ़ता जाता है, जिस कारण से टकराव, तो दो तरीके से मैंपन है, एक टकराव के रूप में और एक लगाव के रूप में। तो इसकी अच्छी चेकिंग करें हम, महसूसता करें और इस भट्टी में क्या करें हम, उसको स्वाहा करें, क्योंकि हमने पहले भी कहा जैसे आए थे वैसे वापस नहीं लौटना है, और अगर वैसे ही लौटे तो भट्टी में आना सार्थक नहीं कहा जाएगा। तो भट्टी की सार्थकता इसी में है कि सचमुच हम महसूस करें क्या क्या कमियां हैं, किस किस प्रकार से हमें योग की सही विधि अपनानी है, और तब जाकर हम सचमुच बाप समान बनेंगे, संपन्न और संपूर्ण, और बहुत जल्दी ये पुरानी लंका की दुनिया खत्म होकर राम राज्य स्थापित होगा, सत्युग आएगा। ओम शांति। तुमको निहार
सभी ब्राह्मण वत्सों को ज्ञान रत्नों से आपने लाभान्वित किया। एक हाथ हिलाकर दीदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार करते हैं।